नमस्ते, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो रोमांच, हास्य और बुद्धि का अनोखा संगम है। इस कहानी का नाम है मिथिला में चोरों और ठगों का अंत। ये कहानी है मिथिलांचल की, जहां चोर, उचक्कों और ठगों का ऐसा बोलबाला था कि वहां रहना दूभर हो गया था। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि आज हम आपको मिलवाएंगे गोनू झा से, एक ऐसे धारदार दिमाग के धनी व्यक्ति से जिसने अपनी चतुराई से अपराधियों के मंसूबों को धूल में मिला दिया। तो तैयार हो जाइए आगे की कहानी सुनने के लिए। मिथिला में चोर उचक्कों और ठगों का कभी बहुत जोर था। चोर उचक्कों के इस जोर के कारण ही कोई अजनबी न तो मिथिला जाना चाहता था और न वहाँ के लोगों से मेल जोल बढ़ाने का साहस कर पाता था। मिथिलांचल नरेश ने चोरी और ठगी रोकने के कई उपाय किए, लेकिन सारे विफल रहे। एक दिन उन्होंने गोनू झा से कहा, अब आप ही कोई उपाय करें पंडित जी, राज्य में चोरी और ठगी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि पड़ोस के राज्यों से कोई मिथिला भ्रमण के लिए आना ही नहीं चाहता। मिथिला की कलात्मक तस्वीरों के लिए पहले यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। मिथिला अपने प्राकृतिक रंग निर्माण के लिए अपनी प्रसिद्धि के कारण व्यापारियों को भी आकर्षित करता था। मखाने की खेती में यह क्षेत्र अव्वल है, लेकिन चोरों और ठगों के उत्पात के कारण अब मखाने के व्यापार पर भी असर पड़ने लगा है। यदि यही हाल रहा तो राजस्व में कमी आएगी और हमें नए कर लगाने होंगे। इससे हमारी प्रजा पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आएगा, यह उचित नहीं होगा। मुझे विश्वास है पंडित जी, आप ही कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे मिथिला की प्रजा को इन ठगों, चोरों और लुटेरों से निजात मिल सकेगी। मिथिला नरेश की बातें सुनकर गोनू झा ने कहा, महाराज आपका आदेश सिर आंखों पर, बस मुझे राज्य के सुरक्षा सिपाहियों में से कुछ सिपाहियों का चुनाव कर उनसे मनचाहा काम लेने की सुविधा प्रदान करें। महाराज ने गोनू झा को यह सुविधा प्रदान कर दी। गोनू झा ने सुरक्षा सिपाहियों में से अपनी पसंद के जवानों का चुनाव किया और उन्हें अपने गांव में ग्रामीणों जैसे लिबास में बुलाया। 3-4 दिनों तक वे उन्हें समझाते रहे कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद वे महाराज के पास गए तथा कहा, महाराज अब मैं ठगी चोरी रोकने के अभियान पर लग गया हूँ। न तो अगले 3 माह तक मैं दरबार में आऊंगा और न यह बताऊंगा कि मैं और मेरे सिपाही क्या कर रहे हैं, और न यह बात आप किसी भी कारण से मुझसे पूछेंगे। महाराज ने स्वीकृति दे दी। गोनू झा ने इन सुरक्षा सिपाहियों को पर्यटकों के वेश में विभिन्न क्षेत्रों के धर्मशालाओं में ठहर जाने का निर्देश दिया तथा राजकोष से मांग कर कुछ कुछ धन भी प्रदान किया। जवानों के चयन में गोनू झा ने एक विशेष नीति अपनाई थी। उन्होंने ऐसे जवानों का चयन किया था जो देखने में मूर्ख लगते थे। 3 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने उन जवानों को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखने, बोलने आदि की कला भी सिखा दी। गोनू झा के गांव से थोड़ी ही दूर पर एक मवेशी मंडी थी, जहां रविवार को मवेशियों का बाजार लगा करता था। एक सुरक्षा सिपाही किसान के भेष में उस हाट में भेजा गया। वह दिन भर हाट में घूमता रहा और मूर्खों के से हाव भाव के साथ मवेशियों के पास जाता, उन्हें निहारता और फिर उसके मालिक से उसकी कीमत पूछता। फिर अपनी अंटी से पैसे निकालकर उन्हें सबके सामने गिनने बैठ जाता। फिर कहता कि उसके पास पैसे कम हैं। लगभग 4-5 चक्कर वह पूरे हाट का लगा चुका था। अब वह किसी भी मवेशी के पास रुकता तो मवेशी के मालिक उसे दुत्कार कर भगा देते, जा जा आगे बढ़, लेना न देना आ गया फिर से। हाट में घूम घूम कर थक जाने के बाद वह जवान एक जगह पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास थोड़ी थोड़ी दूर पर 4 लोग बैठ गए हैं। चुपचाप सबकी पीठ उसकी तरफ थी। जवान ने फिर अपने अंटी से पैसों की थैली निकाली और वहां बैठकर उन्हें गिनने लगे। पैसे गिनकर उसने थैली में डाली और थैली अपनी अंटी में रखकर वह फिर से मंजी के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते लगाते उसकी नज़र एक छोटे से बछड़े पर पड़ी। वह बछड़े के मालिक से उसका मोल पूछा। पहले तो बछड़े का मालिक उस पर नाराज हुआ, मगर जब उसने अपनी अंटी से रुपए निकाल कर दिखाए तो उसने उसकी कीमत 200 रुपए बताई। मोल तोल करने के बाद 150 रुपए में बछड़ा खरीदकर वह जवान उस बछड़े को अपने कंधे पर लाद लिया और गोनू झा के गांव की ओर चलने को हुआ। तो जिसने बछड़ा बेचा था वह उसकी मूर्खता पर हंसते हुए पूछा, बड़े मजबूत जवान हो, किस गांव से आए हो? जवान ने चलते हुए कहा, कमलपुर गांव है मेरा। इतने में चार लोग उसके पास से लगभग दौड़ते हुए निकल गए। जवान ने देखा ये वही चार लोग थे जो कुछ देर पहले उसके आसपास आकर बैठ गए थे। जवान ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और धीमी चाल से वह आगे की ओर चल पड़ा। मवेशी मंडी से थोड़ी ही दूर निकल जाने के बाद एक मोड़ पर उसने देखा कि एक आदमी उसे रुकने का इशारा कर रहा है, मगर वह उस पर बिना ध्यान दिए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसे इशारा करने वाला आदमी तेज कदमों से चलकर उसके पास आ गया और कहने लगा, क्या गणेश भाई, नाराज हो क्या? इतनी आवाज दी, इशारा भी किया, मगर आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्यों? जवान अपनी धीमी गति से चलता रहा। उस आदमी ने फिर कहा, क्या बात है, बोलते ही नहीं है। तब जवान ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मेरा नाम गणेशी नहीं माधव है, माधव झा। हाँ झा जी, यह बताइए यह बकरा कितने का मिला? ये बकरा नहीं है, ये तुम्हें यह बकरा दिख रहा है तो और क्या है? माधव चलते हुए बोल रहा था, भाई ये बकरा नहीं है, बछड़ा है बछड़ा। अरे बकरा और बछड़े में अंतर नहीं समझता क्या? क्या मेरे पास आंखें नहीं हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हो? वह आदमी अब रोष में बोल रहा था। माधव ने भी उत्तेजित होकर जवाब दिया, हाँ बछड़ा बछड़ा बछड़ा, एक नहीं 100 बार बछड़ा है। उस आदमी ने माधव से भी ऊंची आवाज में कहा, बकरा बकरा बकरा। माधव फिर चीखा, बछड़ा बछड़ा बछड़ा। ऐसे ही चीखते चीखते दोनों गांव के मोड़ तक पहुंच गए। वहां उन्हें तीन आदमी दिखे। उनमें से एक ने उन्हें टोका, अरे क्यों चीख रहे हो दोनों? माधव ने रुआसा होकर कहा, यह आदमी मेरे बछड़े को बकरा बता रहा है। बछड़ा चौंक कर उस टोकने वाले आदमी ने पूछा, कहाँ है बछड़ा? माधव ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे कंधे पर। वह आदमी ठहाका लगाकर हंस पड़ा, फिर हंसते हंसते बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो। मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे कंधे पर बछड़ा ही है। अरे भाई, बकरे को बछड़ा कैसे कह दे कोई? अब तुम्हें बकरे को बछड़ा कहना है तो कहो, उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर माधव ने अपने कंधे से बछड़े को उतारा और उसे देखने लगा, फिर बोला, यह बछड़ा ही है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ अपना रास्ता देखो। अभी ये बातें हो ही रही थी कि गांव के मोड़ पर खड़े दो आदमी माधव की तरफ आ गए। माधव ने उन्हें देखा, उसे याद आया जब वह मंडी में सुस्ताने के लिए बैठा था तब यही चारों उसके आजू बाजू आकर बैठ गए थे। उन दोनों ने बछड़ा को सहलाया, फिर बोला, वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा बकरा है तुम्हारा, बोलो बेचोगे? माधव ने उसकी बात सुनकर हताशा दिखाने लगा। उनमें से एक ने फिर कहा, बताओ कितने में बेचोगे, मुझे पसंद आ गया है, यह बहुत शानदार बकरा है। माधव बारी बारी से चारों को देख रहा था। उसे चुप देखकर उन चारों में से एक ने कहा, अरे भाई तुम तो बछड़ा खरीदने गए थे, मतलब कि तुम्हें तो बछड़े की जरूरत है, बकरे की नहीं, ऐसे में ये बकरा तो तुम्हारे लिए बेकार हुआ ना। ऐसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे लिए जो फालतू चीज है उसकी हमें जरूरत है। तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए फालतू है उसका खरीदार तुम्हें राह चलते मिल गया। बेचना चाहो तो बेच दो, जितने में लाए हो उतनी रकम तुम्हें हम दे देंगे। बोलो कितने में खरीदा था? माधव ने मायूसी भरे शब्दों में बोला, 150 में। 150 यानी 150 रुपए। 150 रुपए मतलब 150 रुपए है ना भाई, एक आदमी ने माधव से पूछा। माधव ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उनमें से एक ने माधव का कंधा थपथपा कर कहा, अरे भाई 150 रुपए में 1 और 5 का तो मतलब है, मगर हिसाब किताब में 0 का तो कोई मान ही नहीं होता। बताओ होता है क्या? माधव ने फिर से लहराकर कहा। उसके चेहरे पर उस समय मूर्खता बरस रही थी। तो 150 में से 0 हटा दो तो बचे 1 और 5 यानी 15। ये लो 15 रुपए। उनमें से एक ने माधव के हाथ में 15 रुपए रखते हुए कहा, यह बकरा हमारा हुआ। माधव हाथ में 15 रुपए थामे उन लोगों को देखता रहा और वे लोग बछड़ा लेकर एक साथ मुड़ गए और तेज गति से वहां से जाने लगे। माधव ने उन लोगों को जाते हुए देखता रहा। जब वे लोग उसकी आंखों से ओझल हो गए तब माधव ने गोनू झा के गांव की ओर अपना रुख किया। उस समय सूरज डूब रहा था। माधव धीरे धीरे चलते हुए गोनू झा के घर आया। चांदनी रात में गोनू झा अपने दरवाजे पर खटिया पे लेटे थे। वह माधव को आता देख खटिया से उठ गए और टहलते हुए माधव के पास पहुंच गए। माधव ने उन्हें सारी घटना बता दी। गोनू झा मुस्कुराते हुए माधव की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने माधव का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत ही बुद्धिमानी से काम किया, ठीक ऐसे ही काम मैं चाहता था। अब अगले हफ्ते हाट के दिन हम लोग अलग अलग मवेशी मंडी में पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है उस दिन ये चारों इस बछड़े को बेचने आएंगे। माधव के जाने के बाद गोनू झा ने अन्य सिपाहियों को बुलाया और उनसे जानकारी ली। वे लोग भी अन्य ग्रामीण मंडियों में इसी तरह ठगी के शिकार हुए थे। गोनू झा मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनते रहे और अगले मंडी के दिन मंडी में ही मिलने की बात कहकर उन लोगों को विदा किया और फिर सोने चले गए। अपने गांव के पास लगने वाली मवेशी मंडी में अगले सप्ताह गोनू झा मंडी लगने से पहले ही पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बोरा बिछाकर बैठ गए। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे मिथिला नरेश के दरबार के नामचीन दरबारी हैं। साधारण कृषक निवास में गोनू झा ठेठ ग्रामीण लग रहे थे। गोनू झा के मंडी में पहुंच जाने के बाद धीरे धीरे मवेशी बाजार जमने लगे। 2 घंटे में बाजार पूरी तरह सज गया। गोनू झा की आंखें माधव को तलाश रही थी। एक पेड़ के नीचे बैठा माधव उन्हें दिख गया। वह पोटली से रुपए बार बार निकाल उन्हें गिनने में लगा हुआ था। लगभग 1.5-2 घंटे बाद माधव अचानक अपनी जगह से उठा और तेजी से मवेशी मंडी के कोने की ओर जाने लगा। गोनू झा भी उठे और धीमी गति से माधव की तरफ जाने लगे। माधव चलते हुए जिस जगह पर रुक गया था उस जगह पर 4 आदमी एक सफेद और शानदार बछड़े के साथ खड़े थे। माधव ने उनके पास पहुंचकर बछड़े को सहलाना शुरू कर दिया। शायद उन चारों ने माधव को पहचाना नहीं था या फिर पहचान के अनजान बन रहे थे। माधव को प्यार से बछड़े को सहलाता देखकर उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, पसंद आ गया? पूरे बाजार में ऐसा बछड़ा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, बोलो लेना है? माधव ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। फिर पूछा, कितने में दोगे? 200 रुपए में एकदम, उसने जवाब दिया। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि गोनू झा वहां पहुंच गए और ऊंची आवाज में पूछा, अरे यह बकरा किसका है? चारों के चेहरे का रंग इस सवाल पर उड़ गया। ठीक उसी समय माधव ने कहा, अरे लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया है कि बकरा मुझे बछड़ा सा दिखता है। पिछले हफ्ते भी मैंने एक बकरे को बछड़ा समझकर खरीद लिया था। गोनू झा ने फिर जोर से लगभग चीखते हुए पूछा, अरे बकरे का दाम कौन बताएगा, बता जल्दी। गोनू झा की इस आवाज को सुनकर चार पांच हट्टे कट्टे ग्रामीण दौड़कर उस स्थान पर पहुंच गए और बछड़े के साथ आए चारों ठगों के आजू बाजू में आकर खड़े हो गए। गोनू झा के चीख कर पूछने पर उन चारों में से एक ने कहा, 200 का बछड़ा है हजूर, यह बकरा नहीं बछड़ा है। गोनू झा मुस्कुराए, फिर बोले, जो भी हो मैं तो बकरा ही कहूंगा। गोनू झा थोड़ी देर बारी बारी से उन चारों को देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोले, 200 दाम बताया ना, 200 रुपए है ना। उन चारों ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। गोनू झा ने अपनी आवाज को और धीमा किया और लगभग फुसफुसाते हुए बोले, 200 रुपए मतलब 200 है ना, और 200 रुपए का मतलब है 200। इतना कहने के बाद उन चारों में से एक के पास पहुंचे और उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए बोले, और हिसाब किताब में शून्य का कोई मतलब नहीं होता है ना, तो 200 हटे बच गया 2, यह लो 2 रुपए और यह बकरा मेरा हुआ। गोनू झा की बात सुनकर चारों आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके आजू बाजू खड़े लोगों ने धर दबोचा। मंडी में रौनक होने के कारण वहां भीड़ लग गई। तब गोनू झा ने भीड़ में शामिल लोगों को पूरा वृतांत कह सुनाया कि कैसे इन लोगों ने माधव को असमंजस में डालकर उनका बछड़ा 15 रुपए में ले लिया था। फिर गोनू झा ने इन चारों को हवालात में बंद करवा दिया। दूसरे दिन दूसरे गांव की मंडी से 6 और तीसरे गांव की मंडी से 10 लोगों को इसी तरह गोनू झा की सूझबूझ से सिपाहियों ने धर दबोचा। 7 दिनों के अभियान में ही पूरे मिथिलांचल में छोटे बड़े ठग करते 50 से अधिक लोग पकड़े गए। इसके बाद उनकी पिटाई कर सिपाहियों ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया। 3 माह बीत गए। गोनू झा के ठग पकड़ो अभियान को मिथिलांचल में अपार सफलता मिली। तकरीबन 125 ठगों को सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। 3 माह पूरा होते ही गोनू झा मिथिला दरबार में उपस्थित हुए और महाराज को अपनी सफलता का पूरा वृतांत कह सुनाया। महाराज खुश हुए और गोनू झा की सफलता से प्रसन्न होकर विशेष दरबार का आयोजन किया। दरबार समाप्त हो जाने के बाद महाराज गोनू झा को अपने साथ महल में लेकर आ गए और उन्हें उचित आसन पर बैठाकर पूछा कि आखिर मिथिला के सभी ठगों को इस तरह दबोचने में उन्हें सफलता कैसे मिली। गोनू झा मानो इस प्रश्न के लिए तैयार थे। उन्होंने छुट्टे ही कहा, महाराज मैंने आपकी आज्ञा से सुरक्षा सिपाहियों में से ऐसी जवान छाटे जो देखने में मूर्ख या बेअकल प्रतीत होते थे। उन जवानों को मैंने राजकोष से कुछ रुपए दिलाए जिसकी सहायता से ये जवान ग्रामीण के रूप में घूम सकते थे और कुछ खरीदारियां कर सकते थे। 3 दिनों तक मैंने इन्हें मूर्ख दिखने और मूर्खतापूर्ण आचरण करने का प्रशिक्षण दिया। पूरे मिथिलांचल को मैंने 7 क्षेत्रों में बांटा और इन 7 क्षेत्रों के लिए 7 केंद्र स्थापित किए। इन जवानों को मैंने खुला निर्देश दिया था कि जब कोई उन्हें ठगने की कोशिश करे तो वे ऐसे दिखाए कि वे उसके झांसे में आ गए हैं और ठगे जाए। मैंने जवानों को निर्देश दिया था कि जब कोई जवान ठगा जाए तो वे उसे ठगने वालों को भनक तक लगे बिना उसके घर तक पीछा करे, नाम पता आदि की सूची तैयार कर ले। सच कहे महाराज, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था जो ठीक निशाने पर लगा। महाराज बोले, तो पंडित जी आज से मिथिलांचल ठग मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है ना। गोनू झा ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज। ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए बल प्रयोग हमेशा सही रास्ता नहीं होता। गोनू झा ने अपनी चतुराई और बुद्धि से ठगों को पकड़ा, न कि हिंसा या दंड के सहारे। यह हमें सिखाता है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मक सोच और दिमाग का तेज इस्तेमाल जरूरी है। मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कुलबेली को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई कहानी या किस्सों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।